लेकिन ना जाने कब से वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसके बच्चे कितना ज्यादा रो रहे थे, कितने ज्यादा परेशान थे। कहीं ना कहीं नानी माँ को अब सारी बातें याद आने लगी थीं। अब आगे धीरे धीरे नानी माँ बिस्तर से उठ खड़ी हुई और धीरे से रश्मि के पास जाकर बोली, बेटा मैं अभी आस्था और दामाची को देखना चाहती हूँ। नानी माँ की बात सुनकर रश्मि कुछ पल सोचने लगी और शांत आवाज में बोली, वो दरअसल नानी माँ, फ्लैशबैक। जिस वक्त अरमान को होश आने के बाद सबसे पहले रश्मि ये खुशखबरी देने के लिए आस्था के पास अस्पताल के गार्डन में पहुंची थी, लेकिन आस्था का जवाब सुनकर वो मायूसी से वापस लौट रही थी। तब उसने सोचा क्यों ना नानी माँ को देख लिया जाए। तब वो नानी माँ को देखने के लिए गई थी, लेकिन नानी माँ उठ बैठी थी। तब रश्मि बोली, वो एक्चुअली नानी माँ, अरमान तो इस वक्त आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर, मरिया और देव इन सब के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रहा था। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, नानी माँ हैरान हो गई थीं। लेकिन अभी अभी दामाद जी इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकले हैं, फिर वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं? तब रश्मि को समझ नहीं आया कि वो नानी माँ को क्या जवाब दे। लेकिन तभी अविनाश, जो कि नानी माँ की खबर मिलने के बाद सीधा वहां आया था, उसने आकर तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया था और एक पल के लिए उनका हाथ पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोला, नानी माँ मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अभी अभी तो मुझे एक नया रिश्ता मिला था नानी माँ के रूप में, मुझे लगा कि शायद मैं आपको खो दूंगा। ये कहते हुए अविनाश काफी ज्यादा इमोशनल सा हो रहा था। अब नानी माँ ने भी अविनाश को गले से लगाकर कुछ देर बैठा रही। नानी माँ को आस्था जितना ही प्यार अविनाश पर आ रहा था, आखिर अविनाश आस्था का भाई था। तब नानी माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी नानी माँ अभी कहीं नहीं जाने वाली और जब तक मैं तुम्हारे बच्चे नहीं देख लेती। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अविनाश मुस्कुरा दिया था। वहीं एंजल हल्का सा ब्लश करने लगी थी और उसके गाल पूरी तरह से लाल होने लगे थे। वहीं नानी माँ ने शर्माते हुए एंजल को देख लिया था और उन्हें अच्छी तरह से याद था कि किस तरह से आस्था जब नानी माँ बेहोश थी अपनी गलती रियलाइज कर रही थी कि उसे एंजल के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। तब नानी माँ जल्दी से उठ खड़ी हुई और एंजल के सर पर हाथ रखकर उसके गाल को प्यार से छूते हुए तुरंत उसे अविनाश के पास लाकर खड़ा कर दिया था। अविनाश का हाथ एंजल के हाथों में देते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहना। जैसे ही नानी माँ ने ये बोला, अविनाश चौंक गया था और उसने धीरे से अपना हाथ एंजल के हाथ से निकाल लिया था। वहीं एंजल अब थोड़ा सा उदास हो गई थी। हालांकि नानी माँ की बात सुनकर एंजल काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन अविनाश के इस तरह से उसका हाथ वापस निकालने पर वो अब उदास हो गई थी। लेकिन नानी माँ तुरंत अविनाश की ओर देखकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तब नानी माँ का सीधा सीधा इशारा अविनाश के इस तरह से एंजल का हाथ छोड़ने पर था। तब अविनाश थोड़ा सा हक लाकर बोला, नानी माँ ये पॉसिबल नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरी प्यारी बहन आस्था को एंजल पसंद नहीं है और जो शख्स आस्था को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। अविनाश ने जैसे ही ये कहा, जानो एंजल को अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हुआ। लेकिन तभी तुरंत नानी माँ ने मुस्कुराकर अविनाश का हाथ थाम लिया था और आश्वासन देते हुए बोली, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी आस्था को अच्छे से जानती हूँ और वो भी तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती है। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, एक पल के लिए अविनाश का चेहरा खिल उठा था, क्योंकि मन ही मन में वो भी एंजल को पसंद करने लगा था। अब नानी माँ के इस तरह से बोलने पर एंजल तो चहक उठी और तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया था। नानी माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और शांत स्वर में बोली, बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना, हमने भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा से बर्ताव नहीं किया। तब नानी माँ की बात सुनकर एंजल ने नानी माँ के गाल पर किस करते हुए कहा, प्लीज नानी माँ आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी और आप यकीन जानिए मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। यहाँ पर एंजल का सीधा सीधा इशारा डिंपल से था, जो कि उस दिन के बाद से गायब हो गई थी, जो अब तक नहीं मिल पाई। तभी राधिका ने भी एंजल को आकर गले से लगाया और खुश होकर बोली, मुबारक हो एंजल। इसी तरह से रौनक, रश्मि ने भी एंजल को मुबारकबाद दी और एंजल मुस्कुराकर अविनाश को देखे जा रही थी। अविनाश का दिल भी हल्का फुल्का सा हो गया था और खुश होकर मन में सोचने लगा, मेरी बहन को हर किसी की खुशियों का ख्याल है, बस उसकी जिंदगी में भी उसकी खुशियां एक बार फिर लौट आएं। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए गहरी सोच में डूब गया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अरमान के वार्ड में सभी लोग सर झुकाकर खड़े हुए थे और अरमान एक राजा की तरह बेड पर लेटा हुआ उन सबको देख रहा था, क्योंकि अरमान का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि उसके शरीर में जो वायरस इंजेक्ट किया गया था उसे उसके शरीर की एक एक नस तक दुख रही थी, जिसकी वजह से वो उठकर बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन वो पूरी तरह से होश में आ चुका था और इसलिए एक एक करके सभी वहां जमा हो गए थे, क्योंकि अरमान के दिमाग में कितने सारे सवाल चल रहे होंगे वो सब अच्छी तरह से जानते थे। अब जैसे ही अरमान ने बारी बारी से सबकी ओर देखा, अरमान के बिना कुछ बोले ही बताना शुरू कर दिया था। आकाश तुरंत आगे आकर बोला, दुर्जन सिंह और उसके आदमी को हमने पकड़वा दिया है। फिर सुमित बोला, दुर्जन सिंह को गांव की जेल से निकलवाकर शहर की जेल में डाल दिया गया है और अब तुम अपने अकॉर्डिंग उसे सजा दे सकते हो। आहान सीरियस वॉइस में बोला, भाई एक और बात बताना है, आपको जो वायरस इंजेक्ट किया था वो वंशिका ने किया था, लेकिन बाद में वंशिका ने ही आपको एंटीडोट भी दिया था। ये सुनकर अब अरमान चौंक गया था। वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार वंशिका उसे इतना खतरनाक वायरस कैसे दे सकती है, उसे किस बात का फायदा होगा। ये जरूर उसके किसी ना किसी दुश्मन ने वंशिका को हायर किया होगा। लेकिन तभी टाइगर और मारिया तुरंत बोल पड़े, वंशिका को किसी ने भी हायर नहीं किया था, उसने अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली है। साथ ही साथ देव तुरंत बोल पड़ा, मैंने पता लगाया है कि वंशिका डॉक्टर राजवीर जिंदल से नफरत करती है। अब ये लाइन सुनकर अरमान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो ना समझी में बोला, क्या कहा तुमने? इस बीच अरमान केवल एक ही बात बोला था, क्या कहा तुमने? तब तुरंत देव घबरा कर बोला, वो बॉस, पता चला है कि वंशिका राजवीर जिंदल से नफरत करती है और उसकी उससे कोई ना कोई दुश्मनी है, और वैसे भी हम सब ने हॉस्पिटल में वंशिका को राजवीर जिंदल पर गनतानते हुए देखा था। अब जैसे ही सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग सारी बातें, जो कुछ भी वो जानते थे, सब अरमान को बता दी थी। अब अरमान गहरी सोच में डूब गया और वो सोचने लगा था कि आखिर उसके गुरुजी से वंशिका की क्या दुश्मनी हो सकती है और आखिर वंशिका को किसने हायर किया था। ये एक पहेली सी बन गई थी। तभी अरमान रोबदार आवाज में बोला, मुझे फार्म हाउस लेकर चलने की तैयारी करो। कहीं ना कहीं अरमान को यही लग रहा था कि अगर इन लोगों को पता चल चुका है कि वंशिका ने ही अरमान पर हमला किया था, तो वंशिका को जरूर उसके फार्म हाउस पर कैद कर दिया गया होगा। लेकिन तुरंत ही आकाश बोला, हम तुम्हें फार्म हाउस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वहां पर दुर्जन सिंह मौजूद है, लेकिन वंशिका वहां नहीं है। अब तो अरमान की कंफ्यूजन का कोई ठिकाना नहीं था। उसने केवल एक सरसरी सी नजर बारी बारी से सब पर डाली थी
और सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि आज कितने दिनों के बाद अरमान के अंदर का डेविल किंग रूप सामने आ रहा था। अरमान आस्था की मोहब्बत में पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन अब जिस तरह से अरमान सबको बारी बारी से देख रहा था, तो ये वाकई काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। वेल, अरमान की आंखों की तपेश से सबके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया था। तभी मारिया घबराहट में बोली, किंग, क्वीन वंशिका को साथ लेकर गई है और क्वीन ने हमें वंशिका के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दिया, और क्वीन सिंघानिया मेंशन में है, वो हॉस्पिटल में नहीं है। अब इन सारी बातों के बाद अरमान को अब आस्था का ख्याल आया। उसकी तो हैरानी पड़ चुकी थी कि आस्था उसे ऐसी हालत में छोड़कर भला इस तरह से मेंशन में कैसे जा सकती है। अरमान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। वेल, कुछ न बोलते हुए अरमान ने तुरंत टाइगर की ओर देखा, मानो वो आंखों में उसे हुक्म दे रहा हो कि जाओ जाकर आस्था को अभी इस वक्त मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरमान की नजरें समझते ही टाइगर बिना सोचे समझे तुरंत वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर मेंशन में आस्था ने दादाजी की ओर गहरी नजरों से देखा। वहीं दादाजी को आस्था की नजरें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। तब दादाजी एक बार फिर बोले, बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या हुआ है, और मेरी खिलखिलाती हुई बेटी एकदम प्यारी और इनोसेंट सी आस्था से आज मुझे इतना ज्यादा खौफ क्यों लग रहा है। तभी आस्था उदासी भरी नजरों से देखकर बोली, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है दादाजी, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको शुरू से ही अपने पोते का सच पता था कि वो एक डेविल किंग है और मासूम लोगों की जान लेना उसका शौक है। आपने मेरी शादी एक खूनी से करवाई है, और आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत करती हूँ तो वो उससे करती हूँ जो मासूम लोगों की बेरहमी से जान लेता है, और अरमान सिंघानिया उनमें से एक है। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, दादाजी को तो ऐसा लगा मानो कि उनके सीने में खंजर खोप दिया हो। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आस्था इस तरह की बातें साफ साफ दादाजी को बोल देंगी। तब दादाजी को अपने दिल में काफी ज्यादा भारीपन महसूस हुआ और वो तुरंत बोले, बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, ये बात सच है कि मेरा बेटा ही डेविल किंग है, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली है। तब आस्था तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, चाहे आपके लाडले पोते ने किसी क्रिमिनल की ही जान क्यों ना ली हो, लेकिन जान लेने का हक किसी भी इंसान को नहीं है। आस्था इस वक्त सपाट चेहरे के साथ सीधी बातें कर रही थी, उसके चेहरे पर इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं थी। तभी आस्था की बात सुनकर दादाजी बोले,
चलो मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे ने गलती की है, उसने इस तरह से कुछ लोगों की जान ली है, लेकिन अब वो सुधर चुका है बेटा। मेरा यकीन मानो, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। तुम्हारे प्यार में वो गलत काम सब कुछ छोड़ चुका है, वो अब कभी कोई गलत काम नहीं करेगा बेटा। तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपने प्यार से अरमान को हर एक बुरा काम करने से रोक दोगी। अब आस्था शॉक्ड हो गई थी और दादाजी की ओर वो इस तरह से देख रही थी और मानो कि वो कहना चाह रही हो कि आखिरकार आपको मुझसे क्या दुश्मनी है जो हर बार आप अपने पोते के लिए मुझे मनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दादाजी आस्था की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और विनती करते हुए बोले, बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सिचुएशन में किसी भी तरह का स्ट्रेस लो। दादाजी को इस वक्त आस्था की काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि आस्था जिस तरह से बिना किसी इमोशन के बातचीत कर रही थी, ये अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। वेल, अभी आस्था ने एक नज़र दादाजी की ओर देखा और बोली, माफ़ कीजिएगा दादाजी, लेकिन अब मैं आपकी और बात नहीं मान सकती हूँ और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और एक और बात, जाने से पहले मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। अब दादाजी चौंक कर आस्था की ओर देखने लगे। तब आस्था बिना रुके बोली, वंशिका को कुछ नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा दादाजी, अगर वंशिका का बाल भी बांका हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ये बोलकर आस्था बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग हाथ में लेकर दरवाजे से बाहर जाने लगी और दादाजी का दिल अचानक ही दर्द से भर उठा था और वो तुरंत ही बेड के नीचे जमीन पर बैठते चले गए थे।